కృపాదికి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ సే కహో శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసది గౌర భక్త బృందకి శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ గోప గోపీనాథ్ శ్యామ కుండ రాధా కుండ గిరి గోవర్ధన్ కి శ్రీ వృందావన్ ధామ్ కి శ్రీ శ్రీ నవదీప్ మయాపురధామ్ కి శ్రీమతి తులసీదేవి భక్తిదేవి కి గంగా జమునమాయి కి గౌర ప్రేమానందే హరినామ సంకీర్తన్ కి శ్రీ శ్రీ కృష్ణ బలరామ్ కి శ్రీ శ్రీ రాధా శ్యామ సుందర లలిత విశాఖాజీకి శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయికి శ్రీల ప్రభుపాదికి ఆల్ గ్లోరీ శంభుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీ శంభుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీ శంభుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీ ఆల్ గురంగరాంకి జయ శ్రీల ప్రభుపాదికి అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలి స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభాన్ సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి నమో మహాపదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విసే నమః వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध का 14वां अध्याय और श्लोक हम लोग पढ़ेंगे 33, 34, 35, 36 और 37। तो इसके पूर्व में बोर्ड पर 37 श्लोक लिखा गया है, आवृत्ति उसकी होगी। उसके पूर्व में पूर्व के श्लोकों को पढ़ता हूँ। को वैनम परिक्षेत वेनमेकं ऋते शुभम प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम यदनु ग्रह भाजन अभागे राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो। छोटा सा तात्पर्य इसमें विस्तृत रूप से लिखे हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। जब मानव समाज व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से ईश्वर विहीन हो जाता है और भगवान की सत्ता की निंदा करता है तो समझिए कि उसका विनाश अवश्यम भावी है। भगवान की कृपा को न समझने से ऐसी सभ्यता में सभी प्रकार का अशुभ रहता है। नेक्स्ट श्लोक। इत्थं व्यवस्था हन्तुं ऋषयो रूढमन्येव निजगृह हुंकर तैनेव हतम अच्युत निंदया। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेन भगवान की निंदा के कारण पहले ही मृत तुल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकार से वेन को मार डाला। ऋषि स्वाश्रम पदम गते पुत्रम पुत्र गते पुत्र कले वरम सुनीता पालया मास विद्या योगे न सोचति। इस सब के बाद ऋषिगण अपने अपने आश्रम को चले गए तो राजा बेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्र के बल से सुरक्षित रखने का निश्चय किया। एकदा मुनेस्ते तु स्वरशक्तिशिला हुत्वाग्नि सत् कथाश्चक्रु उपविष्टा सरितटे। एक बार यही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञ अग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। मेरे पीछे दोहराइए। वीक्षा उत्थिता तदा उत्पातान आहो लोका भयं भयं भयंकरान अपि अभद्रम अनाथायः दशुभ्यः न भवेत् भुवः। विक्षोस्थितांस्तदोत्पातान आहो लोक भयंकरान अभ्यभद्रमनाथाय दशिभ्यो न भवेद् भुवः। विक्षोत्थितांस्तदोत्पातान आहो लोक भयंकरान अभ्यभद्रमनाथाय अश्वभ्यो न भवेत् भुवः वृक्षोत्तिष्ठतां वृक्षोस्थितां तदुत्पातान् आहो लोकभयंकरान् अभ्यभद्रं मनाथाय दशिभ्यो न भवेत् भुवः देखकर उत्थितान उत्पन्न तदा तब उत्पातान उपद्रव अशांति आहो कहने लगे लोक समाज में भयं भयं करान आतंक उत्पन्न करते हुए अपि क्या अभद्रम दुर्भाग्य अनाथायः बिना शासक के दशुभ्यः चोर उचक्कों से ना नहीं भवेत होवे वह विश्व का अनुवाद और तत्पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे, जिनमें जिससे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था, अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। चूंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उचक्कों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। जब भी राज्य में उपद्रव होता है या आतंक छा जाता है तो नागरिकों की संपत्ति तथा उनका जीवन असुरक्षित हो जाता है। यह स्थिति चोर उचक्कों के बढ़ने से उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में यह माना जाता है कि शासक या सरकार मृत है। राजा बेन की मृत्यु के कारण सभी विपत्तियां आ गईं। अतः साधु पुरुष प्रजा के कल्याण के लिए चिंताग्रस्त हो उठे। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि साधु पुरुष राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार की दखल नहीं देते, किंतु वे प्रजा पर सदैव दयालु रहते हैं। अतः वे समाज से विलग रह कर भी कृपा तथा दयावश विचार करते हैं कि किस प्रकार सभी नागरिक शांतिपूर्वक अनुष्ठानों को कर सकें और वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन कर सकें। यही इन मुनियों की चिंता का विषय था। इस कलिकाल में सब कुछ अस्त व्यस्त है, अतः साधु पुरुषों को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, जिसकी संस्तुति शास्त्र ने की है। हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भौतिक तथा आध्यात्मिक संपन्नता के लिए हर एक का कर्तव्य है कि वह भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। इस अध्याय के पूर्व चौदहवां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व के अध्याय में, तेरहवें अध्याय में, मैत्री ऋषि ध्रुव महाराज के वंश का वर्णन कर रहे थे, उनके डिसेंडेंट, उनके वंश में, वंश परंपरा का। उसी वंश परंपरा के वर्णन में मैत्री ऋषि ने कहा कि एक बहुत बड़े पवित्र कीर्ति राजा हुए, शील नीति, बहुत सौम्य प्रकृति के, बहुत सज्जन व्यक्ति, भगवान के अन्यतम भक्त। उनका नाम था अंग महाराज। और उसी क्रम में मैत्री ऋषि वर्णन करते यह कह दिया कि अंग महाराज के विषय में वर्णन कि बहुत सुशील व्यक्ति थे, शांत व्यक्ति थे, गुण से संपन्न व्यक्ति थे, परंतु उनको जो पुत्र हुआ अति दुष्ट प्रकृति का हुआ। उसकी दुष्टता की इतनी सीमा हो गई कि अंग महाराज अपने पुत्र से तंग होकर, विक्षुब्ध होकर, दुखी होकर घर का परित्याग करके चले गए। इसके बाद मैत्री ऋषि ने यह भी वर्णन कर दिया कि वह इतना दुष्ट था कि साधु महात्मा लोग उसको मार दिए, हुंकार करके, अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, मंत्र का ऐसे हुंकार करके, दुख से श्राप देकर उसको मार दिया। इस पर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं, अरे अंग महाराज इतने अच्छे व्यक्ति थे, विद्वान थे, सुशील थे, भक्त थे, सदाचार संपन्न थे, सुकृति थे, पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, पवित्र आत्मा को दुष्ट पुत्र कैसे हो सकता है? प्राय माता पिता का संस्कार पुत्र में आता है, तो एक सज्जन व्यक्ति का पुत्र दुष्ट हो गया, और दुष्टता की एक सीमा होती, इतना सीमा कि पिता तंग हो गए, एकदम दुखी हो गए, नरक तुल्य घर बन गया, घर से भाग ही गए। अच्छा ठीक है, वह भाग गए, लेकिन दुष्टता फिर वर्णन करिए, इतनी दुष्टता की सीमा की ऋषि लोग, मुनि लोग, महात्मा लोग, धर्मात्मा लोग, जो अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, किसी को चींटी को भी नहीं मारते हैं, वो राजा को मार दिए, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति हो, जो विशेषकर जो राज्य अभिषिक्त है उससे कुछ दोष भी होता है, गलती भी होता है, तब भी राजा की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहे किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता, अथवा कोई गलती हो भी जाती है तो उसको गलती नहीं माना जाता। तो ऐसे राज्य पद पर अभिषिक्त बैठे हुए राजा को ऋषि लोग, और ऋषि कैसे अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, चींटी को भी मन से भी दुख नहीं देते हैं, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते, और कितना उसकी दुष्टता की कौन सी सीमा होगी कि ऋषि लोग उस व्रत का परित्याग करके, अहिंसा व्रत को छोड़कर मार ही दिए, राजा को मार दिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर मैत्रेय ऋषि दे रहे हैं। तो हम पूरी कथा कहेंगे तो देर होगा, हमें श्लोक भी आना है। पवित्र कीर्ति राजा का पुत्र दुष्ट क्यों हो गया, मैत्रेय ऋषि कहे कि मातृद्रोष से। राजा पुण्यात्मा थे, पवित्र आत्मा थे, परंतु उनकी पत्नी थी, सुनीता थी, वह मृत्यु की पुत्री थी, मृत्यु डेथ मृत्युमान उसकी, राक्षस कुल से आई थी, तो उसके गलत संस्कार के कारण लड़का दुष्ट हो गया। आप लोग जानते हैं वैदिक ग्रंथों में बात कही गई है कि जो पुत्र होता है उस पर पिता माता पिता दोनों का संस्कार ज्यादा आता है, लेकिन माता का संस्कार ज्यादा आता है पुत्र पर, और पुत्री पर पिता का संस्कार आता है। तो सुनीता के दुष्टता के कारण, उसके दुष्चरित्र के कारण वो मृत्यु की पुत्री थी, अच्छी नहीं थी। इस कारण से यद्यपि कि महाराज अंग पवित्र कीर्ति राजा थे, लेकिन उनको दुष्ट पुत्र हो गया। संक्षेप में यही कारण दिया है। उस पर किसका संस्कार पड़ा, अंग बेन पर माता का प्रभाव पड़ा, वो मृत्यु की पुत्री थी, साक्षात डेथ मृत्यु की पुत्री थी, और अब ऋषि लोग क्यों मार दिए। ऋषि लोग इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ऋषि महात्मा लोग समाज से दूर रहते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स से, यहाँ के से दूर रहते हैं, जंगल में बेचारे भजन करते हैं, समाज में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, उनको क्या मतलब है, कौन राजा है, कौन वोट दे रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, क्या मतलब, अपना जप कीर्तन में लगे हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं। एक नीति है, आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण श्रम दृक् शांतो दीना नाम समुपेक्षक श्रोते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्था। कोई ब्राह्मण है, भगवान का भक्त, सम दृष्टि है, सभी प्राणियों के प्रति समान उसकी दृष्टि होती है, सब पर दया करता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति भी गरीब व्यक्ति की जो कष्ट में है उसके दुख की उपेक्षा करता है, उसकी सहायता नहीं करता है, महात्मा है, अपना भक्ति में लगा हुआ है, ब्राह्मण है, सदाचार में लगा हुआ है, परंतु उसके सामने कोई प्राणी है, दीन दुखी है, उसकी सहायता नहीं करता है, तो उसका ब्रह्म तेज, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति वैसे ही नष्ट हो जाती है, स्रवित हो जाती है, जैसे किस भिन्न पात्र है, मिट्टी का पात्र है, उसमें छेद है, टुकड़ा फटा हुआ, टूटा हुआ, ब्रोकन है, क्रेक है, और उसमें पानी रख देते हैं तो धीरे धीरे पानी वो खत्म हो जाता है। बहुत तो साधु भी खूब ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ज्ञान है, तपस्या है, सदाचार है, भक्ति है, परंतु कुछ मतलब नहीं है, चाहे जियो वा मरो वा हमको मतलब नहीं है। यदि उपेक्षा करता है, उसकी सहायता नहीं करता है दीन दुखियों की, तो उसका तेज वैसे ही क्रेक पात्र में रखा हुआ पानी जैसे धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए साधु पुरुष दीनों पर दया करते हैं। भजन व्यक्तिगत भक्ति में करना ही है, लेकिन कोई आवश्यकता है समाज में तो उसकी सहायता करते हैं। तो राजा लोग, श्री ऋषि लोग महात्मा थे। ऐसे वर्णन होता है कि महाराज अंग राज्य का परित्याग करके चले गए। कथा इस प्रकार का वर्णन, इतना तंग आ गए कि एक दिन घर से रात्रि में उठे, कहां भाग गए पता ही नहीं लगा। सब लोग ढूंढा गया, पता नहीं लगा। तो अब कोई राजा होना चाहिए, बिना राजा के राज्य में अशांति हो जाएगी। तो ऋषि मुनि आए और महाराज अंग का पुत्र था वो, जानते, सब लोग जानते थे बहुत दुष्ट प्रति, बहुत खराब है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, समथिंग इज बेटर देन। अब एकदम राजा है ही नहीं तो उसके पुत्र को, महाराज अंग के पुत्र को, बेन को राज पर अभिषिक्त कर दे। मंत्री लोग विरोध कर रहे थे, नहीं है, योग्य नहीं है, इसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, लेकिन फिर भी मंत्रियों की सलाह को की अवहेलना करके ऋषि लोग इसको राज्य पर अभिषिक्त कर दिए। अब राजा बना तो इसमें पावर आ गया, ऐसे ही दुष्ट था इसमें शक्ति आई, बहुत उत्पात चालू किया, उत्पात चालू किया। ऋषि लोग बड़े चिंतित हुए, कह रहे क्या हुआ। तो ऋषि महात्मा लोग पुनः गए, इतना वो दुष्टता कर रहा था, इतना लोगों को सता रहा था, क्या क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो पुनः ये लोग, इनका बहुत क्रोध आया, गए उसके पास, ज्ञान को समझाने के लिए गए कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम राजा हो, प्रजा का पालन करना चाहिए, भगवान की सबको सत्कर्म में लगाओ। वे लोग बड़े युक्ति पूर्वक सांत्वना दे रहे थे, समझा बुझा रहे कि सदाचार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। तो उसके उनके उपदेश का, ऋषि महात्मा लोग उसको उपदेश दे रहे थे सदाचार का, उसका गलत असर पड़ा। वैदिक उपदेशो ही मूर्खाणाम परोपायन शांत है। दुष्ट व्यक्ति को, मूर्ख को यदि कोई उपदेश देता है तो उनका क्रोध बढ़ता है, उनकी शांति नहीं होती है। अब ऐसे उत्साही नहीं होना चाहिए कि किसी को उपदेश देने चल दे। उपदेशो ही मूर्खाणा, मूर्ख व्यक्ति को, अतिशय दुष्ट व्यक्ति को कोई उपदेश आप देते हैं, ज्ञानोपदेश करते हैं, तो उसके शांति न वह है, प्रकोप उनका, क्रोध और बढ़ता है, शांति नहीं होती है। और यह अक्षर सह यह वैदिक उक्ति सत्य निकली बेन के साथ। लोग समझाने गए तो उनको भले सुन लिया, सुनने के बाद ऐसा वो बोला ऋषि मुनि से, क्योंकि ऋषि तुम लोग इतनी दुष्टता करते हो, मैं राज्य पद पर अभिषिक्त हूं, मैं तुम लोगों का पालन करता हूं, मेरे अतिरिक्त तुम लोग किसका भजन करते हो, मैं ईश्वर हूं, अब मेरे मुझको छोड़कर तुम कोई भगवान की आराधना करते हो तो ठीक तुम्हारी वैसी ही स्थिति है जैसे कोई स्त्री अपने पति का परित्याग करके दूसरे का पालन करती है। तो तुम एक दुष्ट रमणी के समान हो, वेश्या के समान तुम लोग। उसने कहा कि मैं प्रत्यक्ष राजा तो मैं, भगवान मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कौन भगवान है। यदि तुमको जप करना है, कुछ भी करा, तो हमको हमारी पूजा करो। ऋषि लोग समझाने गए थे तो उल्टे उन लोगों को इतना भारी, मैंने उन लोगों को दुष्ट कहा, उनको भर्त्सना किया, भगवान की भी निंदा किया। जब यह किया तो ऋषि लोग अब असह्य हो गया उसकी दुष्टता के, असह्य हो गया। तो वे लोग ऋषि लोग क्या किए, उसको मार दिए हुंकार से, हुंकार की, हुंकार मतलब कि विशेष प्रकार का शब्दोच्चारण किए, श्राप दिए और उस मर गए। राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, राज सिंहासन पर उसने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ऐसा नहीं कि उसको मारे किसी प्रकार का, हुंकार किए, श्राप दे दिए, मंत्र पढ़ के उससे मृत्यु हुई। यहां पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि ऋषि लोग मार दिए, लेकिन वो पहले ही मर गया था। हतम अच्युत निंदया, चूंकि वह भगवान की निंदा करता था बहुत, तो वह एज गुड एज डेड, वो मरा ही हुआ था। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि, हम कहते हैं ने कि मेरे द्वारा माया एव एते हता, भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो लोग ऑलरेडी मेरे द्वारा मार दिए गए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साज, तुम केवल जस्ट निमित्त बन गए, तो वह भी मरा ही, मैत्रेय ऋषि कहते वो तो मरा ही हुआ था, मरा हुआ था, मन भगवान की निंदा कर रहा है तो आज वो मरा ही, समझिए। कुछ लोग जीवित रहते हैं, मृत्यु उनको मरा हुआ माना जाता है, जो अति वृद्ध है, अति वृद्ध 105-120 वर्ष उम्र हो गया है, तब उसको जीवित मत मानिए। अथवा कोई अति रुग्ण है, रोगी है, तो वह समझिए कि वह मरा हुआ है, उसको जीवित मत मानिए। अथवा ऐसे घर में आप निवास कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रह रहा है घर में, और उस घर में सांप रहते हैं बहुत, अथवा एक जहरीला, तो उस व्यक्ति को भले जीवित रहे लेकिन अभी सांप काटा भी नहीं है तो उसको मरा ही समझना चाहिए। सांप जिस घर में है, जहरीला सांप रह रहा है और उसी में आप रह रहे हैं, तो अब समझ ले कि वह व्यक्ति मरा ही हुआ है। वैसे जो भगवान की निंदा कर रहा है, भगवत विमुख है, तो भले वह जी रहा है लेकिन उसको जीत मत मानिए, वो मरा हुआ। तो हत अच्युतम, हतम अच्युत निंदा, अरे भगवान की निंदा कर रहा था, भगवान की भक्ति से बहुत कोसों दूर था, भगवान की निंदा करता रहता था, मानता नहीं था, तो वो मरा हुआ था। ऋषि लोग उसको मार दिया हुंकार करके। परोपाई थोड़ा सा तात्पर्य में इसमें लिखे हैं, मरा ही हुआ था, अब ऋषि लोग मरे को ही मार दिया। ठीक है, ऋषि मार कर, तो ऋषि साधु महात्मा है, मार तो दिए क्रोध में, अगर अपने आश्रम में चले गए। ऋषि भी स्वाश्रम पदम गते, अब यहाँ क्या उनको क्या मतलब, उनको कहा भजन से कहा फुर्सत, अब नेक्स्ट क्या होगा, संस्कार कैसे होगा, अंत्येष्टि संस्कार होगा, कौन रहे, उनको मतलब नहीं, सीधे अपने अपने जंगल में आश्रम। तो वे तो चले गए, तो सुनी था पुत्र कलेवरम, जब ऋषि महात्मा लोग चले गए तो पुत्र के कलेवर को, पुत्र के देह को, मतलब मृत देह को, बेन को सुनीता पालया मांस, उसको रक्षा करने लगी। प्राय शरीर छूट जाता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो जला देना चाहिए, अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए, लेकिन बेचारी माँ थी, मातृ हृदय था, कितना भी दुष्ट था लेकिन अपना पुत्र है, अरे पहले तो पुत्र नहीं, बहुत यज्ञ करके, दान करके, तपस्या करके एक पुत्र पैदा हुआ था, अकेला था, और पति भी भाग गए थे, सन्यास लेकर जंगल में चले गए थे, बेचारी के पास कोई नहीं था, एक लड़का था, सारा उनके स्नेह का, उसके स्नेह का पात्र वही था, उसे प्रेम करती थी, और वो अभी ऋषि लोग मार दिए। तो बेचारी संस्कार न करके कुछ ही आशा से कि तंत्र मंत्र से हो सकता है कोई जीवित कर देगा, उसको मेन मृत शरीर को पालया मास रक्षा करने लगे। रक्षा के विद्या योगेन, विद्या और योग से, विद्या मतलब मंत्र तंत्र और योग मतलब कुछ इंग्रेडिएंट शरीर को प्रिजर्व करने के लिए बर्फ में रख दिया जाता है, रखा जाता है ना, चाहे तेल के संयोग से, तो तेल के बर्फ के संयोग से शरीर को रख लिया। अब बेचारी संस्कार, जैसे मरा शरीर हो लेकिन तेल में रहकर, जैसे आचार रखते हैं तेल में सुरक्षित रहता है, चाहे जैसे भी शरीर को, और कुछ मंत्र भी पढ़ती रहती थी, ब्राह्मणों को लगा दिया कि मंत्र तंत्र पढ़ते रहो, कुछ इंग्रेडिएंट विद्या और योग, मंत्र तंत्र और तेल का संयोग इत्यादि। वैसे अब पुनः कोई राजा नहीं है, एकदम राजकता फैल गई, चोर चके चारों तरफ फैली, क्या कर रहे हैं, कोई दंड ही देने वाला नहीं। एक दिन ऋषि लोग, वही ऋषि लोग जिसको मारे थे, अपने अपने आश्रम में गए थे सरस्वती नदी के तट पर। एक दिन सुबह में स्नान किए, स्नान करके यज्ञ किए, अग्नि अग्निहोत्र हुत्वाग्नि आह्वानी या कुछ तीन चार पर अग्नि अग्नि होती है, अग्निहोत्र किए, सरस्वती नदी के तट पर नदी के पवित्र जल में स्नान किए, अग्निहोत्र करके, और इसके बाद उसी पर भगवत कथा में लग गए। ऋषि महात्मा है, भगवान की कथा में लगे, यज्ञ किए, पहले स्नान किए, स्नान पवित्र हुए, इसके बाद यज्ञ किए, अग्निहोत्र किए, और फिर श्रवण कीर्तन में लगे, भगवत कथा में लगे, सत कथा कथा में लगे, तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। तो उन्होंने कुछ वृक्ष, आज इसके श्लोक वृक्ष उत्थित उत्पाता, कुछ उन्होंने उत्पात देखा, अपशगुन देखा, वो नदी के तट पर, सरस्वती के पवित्र तट पर बैठे, उन्होंने उत्पात देखा जो सूचित कर रहा है कि राज्य में शांति नहीं है, प्रजा को कष्ट है। तो सोचने लगे आखिर उत्पात क्यों हो रहा है। उत्पात होता है यदि खराब समय था, भूकंप इत्यादि, अर्थक्वेक इत्यादि, इस तरह लोग समझ गए कि प्रजा में कुछ कष्ट हो। अपि अभद्रम अनाथ, अनाथ पृथ्वी, पृथ्वी का कोई पालन नहीं करने वाला है, पृथ्वी की रक्षा करने वाला नहीं, राज्य की कोई रक्षा करने वाला है, इसीलिए इसका रक्षक कोई नहीं है। इसे दर्शिभ्यो भवति, निश्चित रूप से पृथ्वी पर चारों तरफ से चोर चक्के पर जितना चारों तरफ भरे, प्रजा को कष्ट हो रहा है। तो वे ऋषि सोच रहे थे कैसा समझ खराब समय आ गया है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी यही बात लिखते हैं कि जब भी राज्य में उपद्रव होता है या आतंक छा जाता है, तो नागरिकों की संपत्ति तथा उनका जीवन असुरक्षित है। उपद्रव का, आतंक का मतलब है जो प्रजा है, सिटीजन है, उसका जीवन और उसके धन असुरक्षित हो जाते हैं, पता नहीं कब किसी मृत्यु हो जाएगी, कब कोई मार देगा, आतंकवादी मार देंगे, अथवा कब उसका धन छीन लिया जाएगा। धन और जीवन असुरक्षित हो जाता है, यह इसलिए होता है कि राज्य का अच्छा शासक नहीं होता है, अच्छा शासक नहीं है, शासन ठीक नहीं चल रहा, राजा नहीं है, तो सारी तरह की दुर्व्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो इसी के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो मुनि लोग सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए चिंताग्रस्त हो गए, अब क्या किया जाए। तो चिंता का विषय होता है। तात्पर्य में इसके बाद श्री प्रभुपाद जी यह बात लिखते हैं बाद में कि उस समय की तो एक चिंता कुछ कम ही चिंता थी, आज तो कलयुग में तो सभी तरह की चिंता उपद्रव हो रहा है। तो वहां तो एक प्रॉब्लम थी, यहां तो हजारों प्रॉब्लम है। तो हजारों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है? वो तो ऋषि लोग तो कुछ अपना ढंग से किए, आप लोग जानते हैं क्या क्या फिर राजा बनाए, राजा को अभिषिक्त किए। तो वह इतना डिस्टर्ब स्थिति दुनिया की इस समय है, वर्तमान समय की है कि यह कुछ किया नहीं जाए, कोई उपाय काम नहीं करने वाला है। एक ही सशक्त साधन है जिसका उपयोग करके सारी समस्याओं को का समाधान किया जाता है। अनेक रोग है और सभी रोगों को एक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। और प्रभुपाद जी वह यहाँ पर श्लोक कोट करते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम केवल कलौ नाश देव नाश देव नाश देव। हरि का नाम, हरि का तीन बार, हरि का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम ही क्यों? बोलते ठीक है, जप भी करना चाहिए भगवान का नाम, और भी साधन होगा, कुछ उपाय करना चाहिए कि ना केवल कलौ न अस्ति एव, कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। तो यदि कोई सच्चा समाज सेवक है, चाहता है कि समाज में सुव्यवस्था रहे, शांति रहे, भगवान की भक्ति हो, सदाचार सम, तो उसके लिए कहते हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपन्नता के कुछ भौतिक आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक रोग है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए इसके साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए दोनों भक्ति भी ठीक हो और सामाजिक व्यवस्था भी ठीक हो, यहाँ भी सुख और शांति हो, इसके लिए हर एक का कर्तव्य है कि साधु महात्माओं का तो कर्तव्य है, साधु महात्माओं के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक सिटीजन का यह कर्तव्य है कि वह भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। तो प्रभु का समाधान, ऋषियों के सामने समस्या थी क्या किया जाए, राजा के बिना यह अशांति है, अराजकता है, दुख है, द्वंद्व है, तो ये लोग अपने ढंग का उपाय किए थे, पुनः गए वहां पर, लौट कर गए। तो लौट कर गए तो आशा ती थी कि वो तो मर गया है, महीनों वर्षों हो गया है, वहां गए तो पता लगा कि उसकी मां सुनीता ने शरीर को रखा था। तब एक राजा चाहिए तो उसके पहले थाई का जांघ का मंथन किए, अब पता नहीं वो कैसा मंत्र तंत्र मंथित किए थाई को, तो उससे जैसा काला रंग का व्यक्ति उत्पन्न हुआ, कौवा का जैसा काला होता है, छोटे से ड्वार्फ था, बौना तरह का छोटा कद था, लेकिन और सी हाथ पैर छोटे छोटे थे, लेकिन जबड़ा आता है खूब बड़ा, सिर छोटा नहीं था और बड़ा नम्र व्यक्ति प्रकट हुआ था, कहा कि महात्मा लोग क्या आपकी मैं सेवा करूं, बड़ा नम्र सभ्य व्यक्ति। वो सब क्या कर दो, तू बैठ जाओ, तुम बैठो बेटा बैठो, तुम्हारे बैठना ही सेवा है। तो उसको निषाद, उसे एक जाति उत्पन्न हुई, तो जो पाप का अंश था बेन में, उससे वो लड़का उत्पन्न हुआ। तो पाप से लड़का दूसरा उत्पन्न, अब शरीर पवित्र हो गया, तो उसे दोनों हाथों का मंथन वो किए, अब पता नहीं काट कर किए होंगे, मर रहे हैं तो काटने में तो मंथन कर रहे थे, भुजा का मंथन कर रहे थे, उसमें एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुई, मंथन से वहां प्रकट हुई। तो वह एक में भगवान का अंश था और जो स्त्री थी उसमें लक्ष्मी जी का, तो उसको राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया पृथ्वी महाराज वो राजा पर। तो वो समय उन लोगों ने समाधान निकाला, राजा पुनः अशांति थी तो राजा उत्पन्न करके राजा को प्रतिष्ठित, फिर शांति हो गई। अद्यावधि यहां पर शांति है। पृथ्वी महाराज, पृथ्वी विस्तृत, पृथ्वी का अर्थ होता है फैली हुई, उनका जश और उन्हीं के नाम से इसका नाम है पृथ्वी। परंतु प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि उस समय अवस्था थी, अब आज किसका हाथ मथेंगे आप लोग? मान ली किसी कारण से मोदी जी ना भी रहे, तब कहा क्या आप लोग करेंगे? कौन आपको मथने देगा? और आप मौत करी कहा से पुरुष निकालेंगे कि क्या निकाल सकेंगे? तो इस समय कुछ नहीं, एक मात्र अतः साधु पुरुषों को चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, जिसकी संस्तुति शास्त्रों में की गई है, भौतिक तथा आध्यात्मिक सब सफलता के लिए, संपन्नता के लिए। हरेक का कर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप, यही इसके अतिरिक्त हम दूसरा कर नहीं सकते, हमारे सामर्थ्य से बाहर। तो यह है बेसिकली, आप लोग जानते हैं मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे थे ध्रुव महाराज के चरित्र का, और ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन करेंगे, वंश का वर्णन कर रहे, उसी वंश में बेन भी क्या नहीं करना चाहिए यह आपको सीखना है। तो कैसे सीखे हैं देखिए, बेन क्या करता था तो वह आपको नहीं करेंगे, तो वही, और क्या करना है जो बेन करता था वो नहीं करना है, और जो बेन करता था उसे नहीं करना है। किसको जानना है कि भाई हमको क्या करना चाहिए? तो कैसे जान क्या करना चाहिए? कुछ करना है तो देखना है कि बेन क्या करता था वह नहीं करना है, और करना क्या है जो बेन करता था, तो एकदम दुष्ट। तो यह देखिए प्रभाव कि ध्रुव महाराज के वंश में अब उनसे अच्छा व्यक्ति, उनसे भगवान का भक्त कौन हो सकता है? उन्हीं के वंश में सबसे दुष्ट व्यक्ति भी जन्म ले ली, और बहुत परंपरा दूर नहीं है, दो चार पीढ़ियों में भी इसका जन्म। तो बेसिकली प्रश्न था मैं विदुर जी का कि अंग जैसे पवित्र कीर्ति सुशील राजा को इतना दुष्ट पुत्र कैसे हो गया, और ऋषि लोग कौन सा ऐसा अपराध उसे हो गया था, कितना दुष्ट है, कि कौन सी सीमा हो गई थी कि अपने अहिंसा व्रत का परित्याग करके ऋषियों ने बेन को मार दिया था। ठीक है, तो समय हो गया है, आप लोग के प्रश्न है तो ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।